मुश्किल में हूँ।
अल्लाह के प्यारे महबूब दाना गुलूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बला यानी आफत और मुसीबत किस पर ज्यादा सख्त होती है? फरमाया, अंबिया अलैहिस्सलाम पर, फिर जो बेहतर हैं। आदमी जितना दीन पर होता है उसी के मुताबिक उसे इम्तिहान में डाला जाता है। अगर दीन में वो कवि है, मजबूत है, तो बलाएं और आफतें भी इतनी सख्त होती हैं, और अगर दीन में कमजोर है तो उस पर आसानी की जाती है। तो बंदा हमेशा बला में मुबतला किया जाता है, यहां तक कि जमीन पर यूं चलता है कि उस पर कोई गुनाह ना रहा। हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रहमत आलम नूरे मुजस्सम चाहे बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान अजमत निशान है कि जितनी बला ज्यादा, जितनी आफत और मुसीबत और आजमाइश ज्यादा, उतना ही सवाब ज्यादा। यानी मसलन जो खांस रहा है उसको भी सवाब मिल रहा है, खांसी है। अब जिसकी खांसी में खून आने लगा है उसको तो टेंशन हो गया कि यार कहीं टीबी तो नहीं है, तो इसके सवाब का भी जो भाव था वो बढ़ गया। अच्छा, फिर उसने एक्सरे निकलवाया तो टीबी साबित हो गई, अब तो सवाब की बरसात शुरू हो गई इस पर। अब एकदम मतलब यानी कि आ पड़ा बिस्तर पर और बिल्कुल फेफड़े उसके काम करना छोड़ रहे हैं, तो सवाब की चादर में अब लिपट चुका है। हदीस के अल्फाज नहीं अर्ज कर रहा कि वाकई मतलब यानी कि देखा ना कि उसके जिम्मे गुनाह ही नहीं रहता बीमारियों में। इस तरह जूं जूं बीमारी में घुलता है तो उसका गुनाह जो है वो धुलता है, और जितनी सख्त बीमारी होगी उतनी रहमत ज्यादा होगी, सवाब ज्यादा होगा। अच्छा, ये भी फजाइल समझाओ बंदे को, तो फिर शैतान जो फिर उसको मशवरा देता है, मगर मुझे तो बहुत तकलीफ ज्यादा है, तो भाई तुमको सवाब भी ज्यादा मिलेगा। मगर क्या करूं, मुझे तो नींद भी नहीं आती। भाई ले और सवाब ज्यादा मिलेगा कि नींद भी नहीं आ रही। मगर क्या करूं, दिन भर फिर सुस्त पड़ा रहता हूं, काम काज नहीं हो पाता, तो ले और सवाब ज्यादा मिलेगा कि ये मुसीबत भी तेरे ऊपर आई, तो सवाब तो बढ़ता चला जाएगा। बेसब्री की वजह से सवाब जाया हो जाता है, तो इलाज भी करे और सब्र भी जारी रखे तो सवाब मिलेगा, सब्र ना करे तो फिर सवाब नहीं मिलेगा। उल्टा बाद औकात जाहिर लोग बेसब्री करते हुए कुफरियात बक जाते हैं। अल्लाह ताला हमें आजमाइश में ना डाले, लेकिन बहरहाल शैतान जो बंदे को वसवसे डालता रहता है। फिर आकर कहेगा कि मुझसे तो खड़े होकर नमाज भी नहीं पढ़ी जाती, घंटा भर तो गपशप लगा रहे हैं और देखा तो बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। अरे भाई क्या हुआ, खड़ा नहीं रहा जाता। अल्लाह ताला भी मतलब बसा औकात असबाब बना देता है, तो बंदा नमाज बस एक जज्बे की बात है। मैं एक बार मदीने तैयबा से जद्दा शरीफ आ रहा था। मैं ये वाकया इसलिए अर्ज कर रहा हूं ताकि मुझसे जो इस्लामी भाई मोहब्बत करते उनकी तरगीब के लिए, मतलब कि कभी इस तरह के मौके भी आए तो नमाज का एहतमाम करने के लिए क्या करें। मैं एक बार आ रहा था मदीने पाक से जद्दा शरीफ, मैं अकेला था उन दिनों, अकेला गया था, और इम्कान ये था कि नमाज बीच में आएगी, और खुशकिस्मती से मैं बीमार भी था, तो मैंने मतलब बहरहाल फिर भी अपने मतलब पास पानी की दो बोतलें साथ रखी थी, मैंने प्लास्टिक की जो बोतलें आपने देखी होंगी वो बोतलें पानी की भर के साथ रखी थी कि कहीं भी मतलब मौका मिला। सफर ऐसा था कि बीच में फजर की नमाज आएगी ये मुझे लगा, तो मैं वुजू वुजू करके नमाज पढ़ लूंगा। अब आसमान थोड़ा थोड़ा वो जाहिर होने लगा उजाला उसका, तो मुझे अंदाजा हो गया कि हो ना हो अब सुबह सादिक हो चुकी है। तो लोग हज पढ़ चुके थे, वो वक्त वो था, हज पढ़ चुके थे। तो जब ये लोग हज पढ़ लेते ना, तो बदकिस्मती से मीना में भी कई लोग नमाजें नहीं पढ़ते। 8 तारीख को पढ़ते हैं, 9 तारीख को हज होता ना, 8 तारीख को पढ़ते हैं, और बदकिस्मती से फिर हज के बाद नमाजों में सुस्ती वहां भी शुरू हो जाती है बदकिस्मती से। तो अब सुबह सादिक तो हो गई, तो मैंने आसपास के लोगों को कहा कि फजर का वक्त हो गया है, कुछ कीजिए। ड्राइवर को कहते हैं कि वो रोके अपन नमाज पढ़े। किसी ने लिफ्ट नहीं कराई मुझे, पाकिस्तानी लोग थे, लिफ्ट किसी ने नहीं कराई। तो हिम्मत करके मैं खुद उठा, और बस भी बहुत बड़ी थी, सेप्टको की बस थी वहां की, ये सरकारी बसें जैसे हमारी ओमनी वगैरह होती है, तो सरकारी बस थी वो सेप्टको। तो मैं उसके ड्राइवर के पास गया और उसको मैंने रिक्वेस्ट की कि नमाज का वक्त हो गया है, जिस तरह आपने ऐसे बंद पड़ा टूटे फूटी अरबी में, उसको मैंने समझाया, वो समझा भी, लेकिन उसने मुझे कहा रो भाग, मैं अजनबी, मेरे साथ देने वाला कोई भी मुसलमान तो सब थे एक बात है, लेकिन पाकिस्तानी भी थे, मेरी लैंग्वेज समझते भी थे, सब उर्दू थे, साथ किसी ने नहीं दिया मेरा। मैं वो घबरा के आ गया। अब मैं आसमान को देखूं, उजाला बढ़ता जाए, पोजीशन ऐसी रो तो रोया ना जाए कि क्या आज मैं इस तरह बैठे बैठे नमाज कदा कर दूंगा, बस को नहीं रुकवा सकता। तो बड़ा उजाला फैलने लगा। फिर मैंने हिम्मत करी और फिर उसके बाद ड्राइवर के पास गया, तो वहां मैं मतलब यानी कि फिर पहुंचा दिल जलाता हुआ, डरता हुआ, फिर मैंने कहा कि अब तो तुलू शम्स बिल्कुल करीब है, सूरज निकलने वाला है, अब तो मेहरबानी करके रो रो। फिर उसने मुझे डांटा, भाग रो माने जा भाग। क्या कर सकता था उन दिनों, मुझे इतना तजर्बा नहीं था। मैं सन 80 की बात कर रहा हूँ, जब दावत इस्लामी का सिलसिला भी नहीं था, नश कोई जानता था मुझे उस बस में, कोई भी नहीं जानता था मुझे। बहरहाल मैं फिर वो उसने भाग भाग गया, मैं क्या करूँ। फिर और मैं अपनी सीट पर बैठा, अब तो पोजीशन ऐसी कि फूट फूट कर रो, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रही। वो डांटता था जब भी कोई साथ नहीं देता। फिर जब जद्दा शरीफ आ गया तो मैंने बैगेज बैगेज खींचे अपने, रोड फुटपाथ पे फेंके, जूतू डाले और बोतलें तो थी मेरे पास, वो फटाफट मैंने मतलब वुजू किया, टाइम देखा और फज्र की नमाज फुटपाथ पर पढ़ ली, टाइम नोट कर लिया। तो फिर बाद में मुझे उस वक्त जब मैंने मालूमात की तो मुझे कहीं और उतरना था, जद्दा शरीफ में उतर बड़ी दूर गया था, मैं कहीं और उतर गया था, फंस गया था मैं, वही बस एक चढ़ा हुआ था कि मेरी नमाज क्या होगा, बैठे बैठे कैसे होगी, तो घबराहट में मैं उतर गया था। जद्दा आगे आ गया तो मैं आ गया, जद्दा उतर गया तो मैं दूर उतर गया था। खैर तो मैंने वक्त नोट कर लिया, फिर ढूंढ डांग के जिस तरह भी मंजिल तो मिल गई, आप तक तो पहुंच ही गए। वो वक्त जो नोट किया हुआ था मैंने, उसके बाद वहीं के कैलेंडर से मैंने उसको मैच किया कि मैंने इस वक्त फजर की नमाज पढ़ी थी। तो जब मैंने मिलाया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि तुलुए आफ्ताब से पहले पहले वहां फुटपाथ पर मैंने नमाज पढ़ ली थी अपनी। तो इस तरह भी मदद होती है अल्लाह ताला की, अल्लाह आजमाता है। तो मतलब ये कि मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इतनी जिद्दोजहद करने के बावजूद भी अगर किसी को कोई नमाज ना पढ़ने दें तो अल्लाह ताला गफूर रहीम माफ करे। यहाँ तो खाली बुखारिया हो जाती है, दर्द सर होता है, थोड़ा नजला होता है तो नमाजी भाई भी गोल हो जाते हैं, बुखार में पड़े हैं तो नमाज नहीं पढ़ते, उल्टियां हो रही हैं तो नमाज नहीं पढ़ते, जख्म आ गया तो नमाज नहीं पढ़ते, नमाजी भी नमाज नहीं पढ़ते। अब जो बेचारे नहीं पढ़ते वो तो नहीं पढ़ते, जो पढ़ते हैं वो भी नहीं पढ़ते। तो बहरहाल जिस तरह भी मुमकिन हो मेरे भाइयों, कोशिश करनी चाहिए और नमाज हमें किसी सूरत से किसी बीमारी में नहीं छोड़नी चाहिए। कि जब बंदा मजबूर महज हो जाता है और नेकियों से बिल्कुल माजूर हो जाता है कि वो इतना बीमार हो गया कि अब वो नेकियां नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने इसका मतलब यानी कि हल रखा है। चुनाते हदीस पाक में इरशाद होता है कि जब बंदा इबादत के अच्छे तरीके पर हो, अच्छे तरीके पर इबादत वो किया करता था, उसकी रूटीन है, मामूल है उसका, फिर वो बीमार हो जाए तो जो फरिश्ता उस पर मुअक्किल है, जो मामूर है, उससे फरमाया जाता है इसके लिए वैसे ही अमाल लिख के जब मरज में मुबतला ना था, मतलब जब तंदुरुस्त था और जो अमाल करता था। अब मिसाल के तौर पर तंदुरुस्त था तो नमाज बाद जमात पढ़ता था, अब जमात से महरूम रह गया बीमारी की वजह से और सुस्ती नहीं है, ये सब बीमार क्या वो मुमकिन नहीं उसके लिए जाना, तो भाई जमात का सवाब लिख इसके लिए। फैजान सुन्नत का दर्स देने जाया करता था, अब बीमार ऐसा हुआ कि बेचारा वो दर्स ही नहीं दे, फैजान सुन्नत उठाने की ताकत नहीं, तो दर्स का भी सवाब लिख। बयान करता था तो बयान का भी सवाब लिख। इसका मामूल था कि हर महीने जाता था, तारीखें आ गई नहीं जा पाया बीमारी की वजह से, सवाब लिख। इस तरह मतलब यानी कि जो मरीज हुआ और पहले इबादत पर वो कारबंद था, अब मरज की वजह से महरूम है, तो वही नेकियां उसकी लिख। फरिश्ते हुक्म, तो बगैर इबादत किए इबादत का मीटर चल रहा है मरीज का, यहां तक कि मैं इसे मरज से रिहा करूं या अपनी तरफ बुला लूं, यानी जब तक मैं इसको शिफा नहीं देता लिखता रहे, या शिफा दे दूं या मौत दे दूं, उस वक्त तक तुम इसके लिखते रहो। और हजरत अनस रजी अल्लाह तआला की रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मुसलमान किसी बलाए बदन में मुबतला होता है, यानी बीमार होता है, फरिश्ते को हुक्म होता है लिख जो नेक काम पहले किया करता था, तो अगर शिफा देता है तो धो देता है, तो गुनाह उसके धो देता है, उसको पाक कर देता है, और मौत देता है तो बख्श देता है और रहम फरमाता है। तो इस तरह मतलब मेरे भाइयों, बीमार के तो गोया वारे ही नियारे होते हैं। एक और रिवायत में आता है कि मुसलमान मर्दों औरत के जानो माल और औलाद में हमेशा बला यानी आजमाइश रहती है, यहां तक अल्लाह ताला से इस हाल में मिलता है कि उस पर कुछ खता नहीं। माल में बला, धंधा ठप पड़ा है, कारोबार चलता नहीं है, पैसे फंसे हुए हैं, तरह तरह की परेशानियां माली, नौकरी मिलती नहीं है, परेशानी होती है ना, लोग बेचारे टेंशन में होते हैं, तो माल में ये इसके लिए बला आजमाइश। औलाद, तो औलाद या तो बीमार है या नाफरमान, औलाद भी दर्द सर है बंदे के लिए, बहुत तंग करती है औलाद, परेशान करती है, ये भी आजमाइश उसके लिए। जान में तो बीमार सीमार रहता है बेचारा, परेशान रहता है, टेंशन का शिकार रहता है, या नफ्सियाती मरीज है ना, किसी तरह भी वो जानी तौर पर तकलीफ में है, तो ऐसा शख्स जो मतलब यानी के रहता है तो उसके यूं गुनाह मिटते जाते हैं और जब मरता है तो गुनाहों से वो पाक होता है। तो ये अल्लाह की रहमत है। टेंशन हुआ या नफ्सियाती मर्ज है या कोई सी बीमारी है, उसमें तश्वीश की बात नहीं है, इसमें घबराना नहीं चाहिए और ना ही मतलब यानी कि एहसास कमतरी को करीब आने दें कि ये सब अल्लाह की रहमत है। हम मसलन जो अंधा है, नाबीना है, तो वो भी एहसास कमतरी का शिकार ना हो, इसके लिए भी बड़ी फजीलत है कि हदीस कुदसी है, बुखारी शरीफ की हदीस है। हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं कि ज़बान हक तर्जुमान तो रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हो और फरमान अजमत निशान खुदाए हन्नानो मन्नान जल्ला जलालहू का हो। तो वो हदीस कुदसी। तो अल्लाह के महबूब दानाए गुयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जब किसी बंदे की आंखें लूं, यानी उसको नाबीना कर दूं और इस पर वो सब्र करे तो उसको जन्नत दूंगा। तो जो नाबीना साबरीन में से है, सब्र करने वाला है, आंखें चली गई इस पर मुतमईन है, खुश है, तो इंशाल्लाह वो जन्नती है। तो अब ये नाबीने भी बेचारे मतलब ऐसी ऐसी मतलब इन्हें करते हैं, बस क्या कहिए। अब ये करने से इनकी आंखें आती तो नहीं है, खामा का क्यों बेसब्री कर, अल्लाह की रहमत और रजा पर राजी रहे तो जन्नत मिल रही है, और अगर आप बेसब्री करेंगे और गड़बड़ करेंगे भी तो आपकी आंखें आ तो नहीं जाएंगी। तुम्हारा लिए कि अल्लाह ताला की रजा पर हर दम राजी रहने में ही दोनों जहां की सआदतें हैं।
आए ना फरमानिया।